एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें 17वीं सदी में ले जाएगी। हम एक ऐसे विचारक और उनकी किताब की दुनिया में गोता लगाएंगे जिसने हमारी आज की सोच, तर्क और विज्ञान सबको एक नई दिशा दी।
बिल्कुल, मैं हूं आपका दूसरा मेजबान और आज हम बात करने वाले हैं महान फ्रांसीसी दार्शनिक, गणितज्ञ और वैज्ञानिक रेने डिकार्ट की, और जाहिर है उनकी उस बेहद अहम और प्रभावशाली किताब की जिसने विचारों की दुनिया में सचमुच हलचल मचा दी थी, विधि पर विमर्श यानी डिस्कोर्स ऑन मेथड।
हाँ, और ये सवाल उठना लाजमी है कि भाई 17वीं सदी की ये किताब आज हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो इसका जवाब सीधा सा है, ये किताब हमें सिखाती है कि सोचा कैसे जाए।
सही कहा।
कैसे शक करें, कैसे तर्क की सीढ़ियां चढ़ें और ज्ञान को एक एक ठोस बुनियाद कैसे दें। ये सिर्फ फिलॉसफी पढ़ने वालों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपनी सोच को साफ और मजबूत बनाना चाहता है।
एकदम सही कहा। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। रेने डिकार्त, जिनका समय था 1596 से 1650, उन्हें अक्सर हम आधुनिक दर्शन का पिता या फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी कहते हैं। वो एक ऐसे दौर में थे जब पुरानी मान्यताएं, पुराना ज्ञान सब पर सवाल उठ रहे थे। विज्ञान बदल रहा था और लोग एक निश्चितता की तलाश में थे।
और उनकी अपनी कहानी भी तो कम दिलचस्प नहीं है। उन्होंने उस समय की सबसे अच्छी मानी जाने वाली जेजुएट शिक्षा पाई थी, मतलब धर्म, दर्शन, विज्ञान सब कुछ पढ़ा।
हाँ, एक कठोर पाठ्यक्रम था वो।
लेकिन इतना सब पढ़ने के बाद भी उन्हें लगा कि कहीं भी वो ठोस, वो निश्चित ज्ञान नहीं मिल रहा जिसकी उन्हें तलाश थी, बस गणित को छोड़कर।
बिल्कुल, हर तरफ मतभेद, अधूरी बातें, उन्हें महसूस हुआ।
और यही उनकी खासियत सामने आती है ना, गणित में तो वो माहिर थे ही। सोचिए, एनालिटिकल ज्योमेट्री का आविष्कार किया उन्होंने, ज्यामिति और बीजगणित को जोड़ दिया।
हाँ, ये बहुत बड़ा काम था, और इसी गणित वाली स्पष्टता, वो निश्चितता, वो दर्शन में भी लाना चाहते थे। और देखिए, वो सिर्फ किताबी कीड़े नहीं थे, उन्होंने यूरोप घुमा, सेना में काम किया, अलग अलग संस्कृतियों को देखा।
अच्छा।
इन सब अनुभवों ने उनका ये यकीन और पक्का कर दिया कि जो ज्ञान चला आ रहा है वो कितना अनिश्चित हो सकता है, भ्रामक हो सकता है।
और एक और मजेदार बात यह है कि उन्होंने दर्शन जैसे गंभीर विषय पर यह किताब लैटिन में नहीं लिखी, जो उस वक्त की अकादमिक भाषा थी।
हाँ, ये बहुत अहम है।
उन्होंने इसे फ्रेंच में लिखा, आम लोगों की भाषा में। ये अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम था उस समय।
बिल्कुल, मकसद साफ था कि ज्ञान बस कुछ विद्वानों तक ही ना रहे, आम पढ़े लिखे लोग भी उसे समझें, उस पर बात करें। ज्ञान को सबके लिए खोलना चाहते थे वो।
तो ये किताब विधि पर विमर्श असल में है क्या चीज?
देखिए, एक स्तर पर तो ये डिकार्त की अपनी बौद्धिक यात्रा है, उनकी कहानी की कैसे वो शक के भंवर से निकलकर एक निश्चित ज्ञान तक पहुंचे।
अच्छा।
और दूसरे स्तर पर ये ज्ञान पाने के लिए एक नई, एक व्यवस्थित विधि, या कह लीजिए एक मेथड का घोषणा पत्र है।
और इस विधि का, इस मेथड का मूल विचार क्या था, मतलब कैसे काम करती है ये?
मूल विचार ये था, डिकार्त ने कहा कि भाई, हमारी इंद्रियां, हमारी आंखें, कान, ये सब तो हमें अक्सर धोखा देती हैं।
हाँ, ये तो है।
और जो बातें हमने परंपरा से सीखी हैं उनमें भी कितने विरोधाभास हैं। तो रास्ता क्या है? रास्ता है शक करो।
शक करो?
हाँ, हर उस चीज पर शक करो जिस पर जरा भी शक की गुंजाइश हो। तब तक शक करते रहो जब तक तुम किसी ऐसी चट्टान जैसी सच्चाई तक न पहुंच जाओ जिस पर शक करना मुमकिन ही ना हो।
और वो पहली चट्टान जैसी सच्चाई उन्हें मिली कहाँ?
वो मिली उन्हें अपने ही होने में, अपने सोचने में। उनका वो मशहूर वाक्य, कॉगिटो एर्गो सुम,
मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ।
बिल्कुल, आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये उनके दर्शन की नींव का पहला पत्थर बना। और इसी पत्थर पर उन्होंने तर्क की मदद से ईश्वर के अस्तित्व और इस दुनिया की संरचना को समझने का पूरा एक महल खड़ा करने की कोशिश की।
तो इस किताब में फिर कई बड़े मुद्दे आ जाते हैं, जैसे कि तर्क कैसे किया जाए, शक को एक टूल की तरह कैसे इस्तेमाल करें।
हाँ, और ये सवाल कि हमारा मन और शरीर एक हैं या अलग, ईश्वर का अस्तित्व क्या तर्क से साबित हो सकता है, विज्ञान की सही बुनियाद क्या हो,
और क्या दर्शन का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई काम है भी या नहीं, इन्हीं सब सवालों से डिकार्त जूझते हैं इस किताब में।
हाँ, तो चलिए किताब के अलग अलग हिस्सों में थोड़ा और उतरते हैं। ये किताब 6 भागों में बटी है।
ठीक है, तो पहले भाग में क्या है?
पहले भाग में डिकार्त अपनी पढ़ाई लिखाई से जो निराशा हुई उसके बारे में खुलकर बताते हैं। वो कहते हैं कि भाई मैंने उस जमाने के सारे जरूरी विषय पढ़े, लिटरेचर, भाषाएं, हिस्ट्री, फिलॉसफी, थियोलॉजी। लेकिन इन सब से गुजरने के बाद लगा कि निश्चित ज्ञान तो मिला नहीं, हाँ शक और सवाल बहुत सारे मिल गए। किताबों में इतनी अलग अलग बातें थी कि समझ नहीं आया कि सच किसे माना जाए।
तो फिर उन्होंने क्या किया?
इसी निराशा में उन्होंने तय किया कि वो किताबी ज्ञान छोड़कर दुनिया की महान पुस्तक से सीखेंगे, मतलब घूम फिरकर, लोगों से मिलकर, अनुभव से सीखेंगे।
अच्छा, प्रैक्टिकल अप्रोच।
हाँ, लेकिन वहां भी उन्हें चैन नहीं मिला। उन्होंने देखा कि अलग अलग देशों, अलग अलग संस्कृतियों के रीति रिवाज, उनकी मान्यताएं, वो भी एक दूसरे से कितनी अलग हैं, अक्सर एकदम उल्टी।
हाँ, ये तो होता है।
तो इससे उनका ये विश्वास और पक्का हो गया कि ना तो पुरानी किताबें, न बाहरी दुनिया का अनुभव हमें निश्चित ज्ञान दे सकता है। तो रास्ता क्या बचा?
अपनी बुद्धि पर भरोसा करना।
बिल्कुल, अपनी तर्क शक्ति पर। और यहीं से दूसरे भाग की बात शुरू होती है, जो इस किताब का शायद सबसे अहम हिस्सा है। यहां डेकार्त ज्ञान तक पहुंचने की अपनी विधि, अपने मेथड के चार सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली नियम बताते हैं।
चार नियम? अच्छा, कौन कौन से?
पहला नियम है स्पष्टता का नियम, रूल ऑफ क्लैरिटी। इसे आप संदेह का नियम भी कह सकते हैं। ये कहता है किसी भी बात को तब तक सच मत मानो जब तक वो तुम्हारे दिमाग में इतनी साफ और स्पष्ट न हो कि उस पर शक करने की कोई वजह ही न बचे। जल्दबाजी और पूर्वाग्रह से बचो।
ठीक है, मतलब पूरी तरह क्लियर हुए बिना एक्सेप्ट मत करो। और दूसरा?
दूसरा है विश्लेषण का नियम, रूल ऑफ एनालिसिस। यानी जब कोई मुश्किल समस्या सामने आए तो उसे छोटे छोटे सरल हिस्सों में तोड़ लो। जितने छोटे हिस्सों में तोड़ सको उतना अच्छा, ताकि हर हिस्से को आसानी से समझा जा सके।
जैसे किसी मशीन को समझने के लिए उसके पुर्जे अलग करते हैं, वैसा कुछ?
हाँ, बिल्कुल वैसा ही। तीसरा नियम है संश्लेषण या क्रम का नियम, रूल ऑफ सिंथेसिस ऑर्डर। अपने विचारों को एक लॉजिकल क्रम में रखो। सबसे आसान, सबसे बुनियादी विचारों से शुरू करो और फिर धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, ज्यादा मुश्किल विचारों की तरफ बढ़ो। एक तरह से ज्ञान की सीढ़ी बनाओ।
अच्छा, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर। और चौथा?
चौथा नियम है गणना या समीक्षा का नियम, रूल ऑफ एन्यूमरेशन रिव्यू। पूरी प्रक्रिया की, मतलब समस्या को तोड़ने से लेकर समाधान तक, इतनी सावधानी से जांच करो, उसकी गिनती करो कि पक्का हो जाए कि तुमने कोई जरूरी हिस्सा या स्टेप छोड़ा नहीं है।
सब कुछ कवर हो गया, ये पक्का करना।
हाँ, डेकार्त को यकीन था कि अगर इन चार नियमों का ईमानदारी से पालन करें तो जैसे गणित में निश्चित जवाब मिलते हैं, वैसे ही दर्शन और दूसरे फील्ड्स में भी मिल सकते हैं।
लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर हम हर पुरानी बात पर शक कर रहे हैं तो जब तक ये दार्शनिक खोज पूरी नहीं होती तब तक जिएंगे कैसे? रोजमर्रा की जिंदगी कैसे चलेगी?
हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है और इसका जवाब डेकार्त तीसरे भाग में देते हैं। वो इसके लिए एक अस्थायी नैतिकता, या कह लीजिए एक काम चलाओ मॉरल कोड बनाते हैं।
अच्छा, वो क्या है?
इसमें मुख्य रूप से तीन बातें हैं। पहली, जब तक तुम्हें कोई बेहतर रास्ता ना मिले, अपने देश के कानून माना, रीति रिवाज मानो, अपना धर्म मानते रहो और समाज के समझदार लोगों की राय पर चलो।
ठीक है, एक तरह से यथास्थिति बनाए रखो।
हाँ, जब तक कुछ पक्का ना हो। दूसरी बात, अपने फैसलों और कामों में दृढ़ रहो। एक बार सोच समझ कर कोई रास्ता चुन लिया तो उस पर टिके रहो, भले ही वो 100% सही ना लगे। उन्होंने जंगल में खोई यात्री का उदाहरण दिया।
हाँ, कि अगर वो दिशा बदलता रहेगा तो भटक जाएगा, लेकिन एक दिशा में चलेगा तो शायद निकल जाए।
बिल्कुल। और तीसरी सलाह, जिसमें स्टोइक फिलॉसफी की झलक है, दुनिया को अपनी इच्छाओं के हिसाब से बदलने की कोशिश करने के बजाय अपनी इच्छाओं को दुनिया के हिसाब से ढालो।
मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसे लेकर परेशान होने से अच्छा है कि हम अपनी सोच, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करें।
एकदम सही, जो हमारे वश में है उस पर ध्यान दो। खैर, अब आता है चौथा भाग, जो शायद इस किताब का दिल है। यहां डेकार्त अपनी विधि का इस्तेमाल करते हैं मेटाफिजिक्स के सबसे गहरे सवालों पर, अस्तित्व, आत्मा, ईश्वर।
यहां वो अपने शक को चरम पर ले जाते हैं, है ना?
हाँ, बिल्कुल। वो पूछते हैं, क्या हमारी इंद्रियां भरोसे लायक हैं? नहीं, वो धोखा देती हैं। पानी में डूबी छड़ी टेढ़ी दिखती है। क्या हमारा तर्क हमेशा सही होता है? नहीं, गणित में भी लोग गलतियां करते हैं। क्या हम यकीन से कह सकते हैं कि हम अभी जाग रहे हैं, सपना नहीं देख रहे? शायद नहीं।
हो सकता है कोई शैतान हमें भ्रम में डाल रहा हो।
हाँ, उनका वो दुष्ट राक्षस वाला तर्क। लेकिन इस गहरे शक के समंदर में डेकार्त को एक छोटा सा टापू मिलता है, एक ऐसी चीज जिस पर शक नहीं किया जा सकता।
और वो क्या है?
वो है शक करने वाले का अपना होना। अगर मैं शक कर रहा हूं, सोच रहा हूं, धोखा खा रहा हूं, तो भी ये सब होने के लिए मेरा होना तो जरूरी है। एक मैं तो है जो ये सब कर रहा है।
हाँ?
और यही से निकलता है कॉगितो एर्गो सुम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ।
बिल्कुल,
ये वो पहली अटल शक से परे सच्चाई है जिस पर वो अपने दर्शन की इमारत खड़ी करते हैं।
ये कमाल की बात है, अपने होने का सबसे पक्का सबूत कहीं बाहर नहीं अपने अंदर ही मिल गया।
हाँ, और इसी बिंदु से वो आगे बढ़ते हैं, पूछते हैं मैं क्या हूँ। जवाब मिलता है एक सोचने वाली चीज, रेस कोगितांस, एक मन जो कि भौतिक शरीर रेस एक्सटेंसा से अलग है।
और फिर वो ईश्वर के अस्तित्व की बात करते हैं।
हाँ, वो तर्क देते हैं कि मेरे अंदर, जो कि एक अपूर्ण प्राणी हूँ, एक पूर्ण सत्ता यानी ईश्वर का विचार है। ये पूर्णता का विचार मुझ अपूर्ण में अपने आप से तो आ नहीं सकता। इसे किसी पूर्ण सत्ता ने ही मेरे अंदर डाला होगा, यानी ईश्वर है। और क्योंकि ईश्वर पूर्ण है इसलिए वो धोखेबाज नहीं हो सकता। इसलिए जब हम किसी विचार को बिल्कुल स्पष्ट और सुस्पष्ट रूप से समझते हैं तो वो सच होता है, ईश्वर इसकी गारंटी देता है। ये तर्क थोड़े जटिल हैं और इन पर बहुत बहस हुई है, पर डेकार्त के सिस्टम के लिए जरूरी थे।
ठीक है, अब पांचवें भाग में वो प्रकृति और जीवित प्राणियों की बात करते हैं।
हाँ, पांचवें भाग में डेकार्त अपनी इस मैकेनिकल तार्किक विधि को भौतिक दुनिया पर लागू करते हैं। वो प्रकृति को एक विशाल मशीन की तरह देखते हैं जिसके सारे काम पदार्थ और गति के नियमों से समझाए जा सकते हैं। जैसे घड़ी चलती है वैसे ही दुनिया।
अच्छा, एक मैकेनिकल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट।
बिल्कुल, उन्होंने मानव शरीर के काम करने के तरीके जैसे ब्लड सर्कुलेशन, दिल की धड़कन, इसे भी इसी मैकेनिकल नजरिए से समझाया। विलियम हार्वे की खोजों का जिक्र करते हुए पर उसे पूरी तरह एक पंपिंग मशीन की तरह देखा।
और यही वो इंसानों और जानवरों में फर्क करते हैं शायद।
हाँ, बहुत तीखा फर्क। उनके मुताबिक जानवर जटिल मशीनें तो हैं पर उनमें सोचने वाली आत्मा या तर्क क्षमता नहीं होती। वो बस अपनी बनावट के अनुसार रिएक्ट करते हैं।
जबकि इंसान अलग है।
बिल्कुल, डेकार्त कहते हैं इंसान अलग हैं क्योंकि उनमें दो ऐसी क्षमताएं हैं जो किसी मशीन या जानवर में नहीं हो सकती। पहली, भाषा का क्रिएटिव इस्तेमाल। हम नए नए वाक्य बना सकते हैं, विचार व्यक्त कर सकते हैं। दूसरी, तर्क का लचीला प्रयोग। हम किसी भी सिचुएशन को समझकर उसके हिसाब से समझदारी से काम कर सकते हैं। ये क्षमताएं डेकार्त के अनुसार हमारे शरीर से नहीं बल्कि हमारी अभौतिक सोचने वाली आत्मा यानी मन से आती हैं।
और यहीं पर उनका वो मशहूर मन शरीर द्वैतवाद, माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म, आता है कि मन और शरीर दो बिल्कुल अलग तरह की चीजें हैं।
एकदम सही। और अंत में छठे भाग में डेकार्त भविष्य की ओर देखते हैं। वो बताते हैं कि विज्ञान और ज्ञान की तरक्की के लिए क्या जरूरी है। वो जोर देते हैं कि वैज्ञानिकों को आपस में सहयोग करना चाहिए, अपने प्रयोगों और नतीजों को खुले तौर पर साझा करना चाहिए
ताकि ज्ञान तेजी से बढ़ सके।
हाँ, और इसी सिलसिले में वो फिर याद दिलाते हैं कि उन्होंने ये किताब फ्रेंच में क्यों लिखी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वैज्ञानिक खोजों में रुचि लें, अपना योगदान दें।
और वो दर्शन और विज्ञान के प्रैक्टिकल मकसद पर भी जोर देते हैं।
बहुत जोर देते हैं। उनका सपना था कि ज्ञान के जरिए हम प्रकृति के रहस्यों को समझें, उसे कंट्रोल करें, ताकि मेडिसिन टेक्नोलॉजी में तरक्की हो और इंसान इस धरती पर ज्यादा सुखी और लंबा जीवन जी सके, मानो प्रकृति के स्वामी और शासक बन सकें। ये एक तरह से पूरी मानवता को इस साइंटिफिक मिशन में शामिल होने का न्योता था।
तो इस पूरी किताब और डेकार्त के विचारों से कुछ खास बातें या मुख्य संदेश निकल कर आते हैं?
हाँ, कई अहम बातें। शायद सबसे पहली और सबसे जरूरी है विधि या तरीके का महत्व। डेकार्त के लिए सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना काफी नहीं है, सही तरीके से सोचना, सही मेथड से जांचना ज्यादा जरूरी है।
हाँ, वरना ज्ञान की ढेर में खो जाएंगे।
बिल्कुल। दूसरा, ज्ञान की एकता का विचार। उनका मानना था कि सारा सच्चा ज्ञान आपस में जुड़ा है और एक ही लॉजिकल सिस्टम का हिस्सा है जिसका मॉडल गणित है।
तीसरा, जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है, वो है व्यक्तिगत तर्क की प्रधानता। हमें सिर्फ इसलिए कुछ नहीं मान लेना चाहिए कि किसी ने कह दिया या कहीं लिखा है। खुद जांचो, परखो।
हाँ, ये स्वतंत्र सोच का आवाहन था। चौथा, उनका मन शरीर का द्वैतवाद जिसने पश्चिमी सोच पर गहरा असर डाला और आज भी बहस का मुद्दा है।
पांचवा, संदेह का सकारात्मक उपयोग। शक करना ज्ञान का दुश्मन नहीं, दोस्त है। ये फिल्टर की तरह काम करता है।
छठा, दर्शन का व्यवहारिक उद्देश्य। फिलॉसफी सिर्फ सोचने के लिए नहीं बल्कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए है, मेडिसिन टेक्नोलॉजी के जरिए।
और सातवां, ज्ञान का लोकतंत्रीकरण। फ्रेंच में लिखना, सबके लिए मेथड बताना, ये दिखाता है कि ज्ञान सबका हक है।
हाँ, और अगर हम इन विचारों को आज के भारतीय संदर्भ में देखें तो कई सवाल उठते हैं।
जैसे?
जैसे डिकार्त का संदेह का तरीका हमें कैसे मदद कर सकता है जब हम समाज में फैली मान्यताओं, परंपराओं या फिर व्हाट्सएप पर आई फॉरवर्ड्स का सामना करते हैं।
हाँ, ये तो बहुत प्रासंगिक है। क्या हम अपनी पढ़ाई या काम की समस्याओं को हल करने के लिए उनके वो चार नियम, विश्लेषण, क्रम, समीक्षा इस्तेमाल कर सकते हैं?
बिल्कुल। और एक बड़ा सवाल, हम अपनी व्यक्तिगत तर्क क्षमता और अपनी सांस्कृतिक जड़ों, अपने पारंपरिक ज्ञान के बीच संतुलन कैसे बनाएं? ये सवाल डिकार्त आज भी हमसे पूछते हैं।
वाकई? और उनकी किताब में कुछ पंक्तियां हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं।
हाँ, कुछ यादगार सूत्र वाक्य हैं। जाहिर है सबसे मशहूर तो वही है,
कॉगिटो एर्गो सम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। इसका मतलब कि हमारे सोचने का एहसास ही हमारे होने का सबसे पक्का सबूत है।
हाँ, संदेह के तूफान में एक लंगर की तरह आत्मचेतना ही ज्ञान की शुरुआत है।
और उनकी विधि के पहले नियम का सार भी कितना शक्तिशाली है, केवल उसी बात को सच मानो जो तुम्हारे लिए इतनी स्पष्ट और सुस्पष्ट हो कि उस पर संदेह करने की कोई गुंजाइश ही न बचे।
ये तो क्रिटिकल थिंकिंग का मूल मंत्र है, बिना जांचे परखे कुछ भी मत मानो।
और छठे भाग का वो वाक्य जो आधुनिक दुनिया की महत्वाकांक्षा को दिखाता है, स्वयं को प्रकृति का स्वामी और शासक बना सकें।
हाँ, ये दिखाता है कि कैसे ज्ञान और तकनीक के जरिए इंसान प्रकृति को समझने और उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलने की कोशिश करता रहा है। बेशक आज हम इसके अच्छे बुरे दोनों पहलुओं को ज्यादा गहराई से समझ रहे हैं।
तो चलिए अब बात करते हैं कि इन सदियों पुराने विचारों का हमारी आज की जिंदगी में क्या काम आ सकता है, कैसे इस्तेमाल करें इन्हें।
उनके वो चार नियम वाकई बहुत प्रैक्टिकल हैं। सोचिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट है या परीक्षा की तैयारी। पहला नियम, सुनी सुनाई बातों पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। दूसरा नियम, काम को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांट लें।
तीसरा
नियम, सबसे आसान हिस्से से शुरू करें और धीरे धीरे मुश्किल की तरफ बढ़ें। चौथा नियम, आखिर में पूरी योजना को फिर से देखें कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। ये तरीका किसी भी काम को व्यवस्थित बना सकता है।
और क्रिटिकल थिंकिंग को बेहतर बनाने के लिए आजकल इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, कैसे परखें?
डिकार्त का संदेह यहाँ काम आता है। कोई भी खबर पढ़ें, वीडियो देखें, तुरंत यकीन ना करें। पूछें, सबूत क्या है, सोर्स क्या है, कोई एजेंडा तो नहीं, कोई दूसरा पहलू भी है क्या? और सबसे जरूरी, अपनी खुद की मान्यताओं पर भी सवाल उठाएं।
और मानसिक शांति के लिए जीवन की अनिश्चितताओं से कैसे निपटें, डिकार्त से कोई मदद?
हाँ, उनकी वो अस्थायी नैतिकता का तीसरा नियम याद है, दुनिया को बदलने के बजाय अपनी इच्छाओं को बदलें।
हाँ,
ये आज भी उतना ही काम का है। बहुत सी चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, उन पर चिंता करके या गुस्सा करके ऊर्जा बर्बाद होती है। डिकार्त की सलाह है, अपना ध्यान उन चीजों पर लगाएं जो हमारे वश में हैं, हमारे विचार, हमारी प्रतिक्रियाएं। इससे हम ज्यादा शांत और लचीले बन सकते हैं।
तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है, सबसे अहम बात क्या है जो हमें डिकार्त और उनकी विधि पर विमर्श से लेनी चाहिए?
मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि सवाल पूछना, शक करना ज्ञान का दुश्मन नहीं बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त है। एक व्यवस्थित लॉजिकल शक हमें अंधविश्वास से निकालकर ज्ञान की ठोस जमीन पर खड़ा करता है। डिकार्त ने हमें अपनी बुद्धि पर भरोसा करना सिखाया।
और मेरे लिए ये बात बहुत अहम है कि डिकार्त ने निश्चितता की तलाश की शुरुआत किसी बाहरी सत्ता से नहीं बल्कि खुद व्यक्ति के अंदर उसकी अपनी सोचने की क्षमता से की। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था जिसने न सिर्फ दर्शन को बल्कि विज्ञान और समाज को देखने के हमारे नजरिए को हमेशा के लिए बदल दिया, तर्क की ताकत का एहसास कराया।
और अब एक सवाल जो डिकार्त के काम से उभरता है और आज भी सोचने लायक है। डिकार्त ने हमें व्यक्तिगत तर्क पर जोर देना सिखाया, पर आज के इस बेहद जटिल और जुड़ी हुई दुनिया में जहां जानकारी का विस्फोट है और समस्याएं ग्लोबल हैं, क्या सिर्फ व्यक्तिगत तर्क काफी है? या हमें सामूहिक बुद्धि, सहयोग और अलग अलग दृष्टिकोणों को जोड़ने के नए तरीकों की भी उतनी ही जरूरत है?
ये सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।